कल तो हमने वर्णन किया था यशोदा जी कृष्ण के पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है और कृष्ण डर के मारे कि मैंने मटका को दही के भांडे को तोड़ दिया है, इसलिए भैया जरूर पकड़ करके मुझे मारेगी, इसलिए उसे पीछे से दौड़ रही है पकड़ने के लिए, जिसको ब्रह्मा शंकर इत्यादि तपस्या के द्वारा पवित्र हुए हृदय में भी जिनका ध्यान नहीं कर पाते, जिन चरण कमलों का आज गोपी यशोदा जी कृष्ण जितना दौड़ रहे हैं उससे अधिक और तेजी से दौड़ कृष्ण को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। काल जाऊं जरासंध जिनको नहीं पकड़ सका और ये गोपी यशोदा जी उनको पर ब्रह्म को समस्त ईश्वरों के ईश्वर को आज पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कृष्ण छोटे से बच्चे हैं, अब पकड़ा बस झट इधर से उधर दौड़ करके भाग जाते हैं। यशोदा मैया का स्थूल शरीर नितंब नीचे बहुत भारी, ऊपर में वस्त्रक्षल भी धारी, बीच में कमर पतली सी, मालूम हो जाए टूट न जाए ऐसी परम सुंदरी, और वो दौड़ रही है पीछे पीछे, पसीने से बंद हो गई, केश के फूल जो लगाए गए थे वो धीरे धीरे एक एक करके गिरने लगे, दौड़ रही है कृष्ण से, यदि तेजी से अधिक न दौड़े तो कृष्ण को पकड़ेंगी कैसे, इसलिए कृष्ण जितना दौड़ रहे हैं उसे डबल चलना चाहिए, बराबर दौड़ने से भी पकड़ में नहीं आएगी, दूरी उतना ही बराबर रह जाएगी, इसलिए खूब जोर से दौड़, केश एक एक करके गिर रहे हैं, करें भैया तुम अकेले नहीं है, हम तो तुम्हारे साथ में हैं, कदम में कदम मिला करके हम भी आ रहे हैं, फूल गिर रहे हैं सब, और जो यशोदा जी दौड़ रही हैं, कृष्ण ने देखा जी मैया तुमने से तरबर हो गई थोड़ी सी, उनका चित्त द्रवित हुआ, यशोदा जी ने कहा देखो डटिया उठाई और मारने के लिए, कृष्ण ने कहा मैया मुझे मत मार, किसने मार रही, तूने मटका क्यों फोड़ा, तो मैंने नहीं फोड़ा, वो तो तुम्हारे पैर के कड़ुले से मोटे मोटे चांदी के पैनी है उसी से लग करके छोकर और टूट गया, अच्छा मुझे टूट गया,
मैं तो कौन टूटता,
बंदर बंधो चोर, अजय चोर मेरे वंश में नहीं हुआ, यदि हुआ गया तो तेरे वंश में, हमारे वंश में चोर नहीं, जो यशोदा जी थी लठिया लेकर के दौड़ी और कृष्ण को पीछे से लेकर के पकड़ लिया, भगवान जब ना हमारे प्रति उनकी दया है, हमारे प्रति उनका प्रेम, उससे अधिक हमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो कृष्ण कभी भी पकड़ में नहीं आएंगे, ये चीज समझ। इसके बाद में यशोदा मैया कहा अच्छा तू रो रहा है, डंडा छोड़ दिया, अच्छा तो तुझे बांध करके रखूं, कहीं तू अशांत लड़का, कहीं तू भाग न जाए, इसमें क्रोध अवस्था में, इसलिए इसको पकड़ करके अभी ओखल से बांध, ओखल बहुत भार है, इसको लेकर के भाग नहीं सकता, इसलिए उसमें बांधने चली, दो अंगुल कम हो रही है, हमने कल ये पाठ किया था प्रसंग संक्षेप में आपको सुना है, दो अंगुल कम पड़ रही, पहले अपने रेशम की डोरी से बांधी, दो अंगुल कम पड़ गया, कृष्ण की कमर इतनी सी मोटी, द्वादश अंगुल, बारह अंगुल यशोदा के अंगुल से, और उनका ये रेशमी की डोर कम से कम तो दो तीन हाथ लंबी, किंतु बांध में नहीं आया, यशोदा जी ने कहा ये क्या बात है, सखी सखी एक रस्सी लाओ तो, वो बांधने की रस्सी ले आई, उसमें जोड़ दिया, बांधा, देखा दो अंगुल, लोगों ने देखा जी ये क्या बात हो गई, कमर उतनी की उतनी और रस्सी लंबी होती गई, एक दो तीन चार पाँच छः ब्रज की जितनी भी गोकुल की रस्सियां थी सब लाई गई, नहीं बंधी, बस दो अंगुल कम। कृष्ण की जोग जोग माया अत्यंत घटना
अत्यंत
जो नहीं होगा उसको भी करा देती है। कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं मुझे मैया बांध देगी तो बच्चों के साथ में खेलूंगा कैसे, कई अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती, वो चुपचाप खड़ी हैं, बछड़े दूध नहीं पी रहे, तो मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा, इसलिए मुझे न बांध। इतने में साथ ही साथ में उनकी जो माया शक्ति आकर कमर उतनी की उतनी, रस्सी भी लंबी होती गई किंतु दो अंगुल का, ये दो अंगुल किस लिए काम, यदि हम साधन नहीं करते वो एक काम, और दूसरा भगवान की कृपा नहीं होती ये, यदि हम अच्छी तरह से साधन करें जैसे कि कृष्ण का चित्त द्रवित हो जाए तो ये एक अंगुल कम शक्ति है, और हमारे कष्टों को देख करके कृष्ण का द्रवित हो जाएगा वो दूसरी अंग। इसलिए इतना हमको भजन साधन करना है जिससे कृष्ण का चित्त, आप केवल साधन करते हैं और ऐसा साधन करते हैं कि कृष्ण का चित्त द्रवित नहीं होता, तब तक लाखों जन्मों में कृष्ण द्रवित नहीं होंगे और उनको हम पा नहीं सकते, ऐसा परिश्रम करना पड़ेगा भजन में, इतना वैराग्य भी होना चाहिए ये कृष्ण द्रवित हो जाए। जो सोदा जी बांधते बांधते सवेरे से 10 बज गया बिना खाए पिए, सोच रही हैं आज मेरा पेट से निकला बच्चा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं वर्षों ही, हजारों वर्षों में बांधती रह जाऊंगी किंतु बांधूंगी जरूर, ये है भजन का, जितना कष्ट होगा आप सह लेंगे, स्त्री पुत्र परिवार हमको छोड़ दे हम भजन करें, यदि ऐसा भाव नहीं आएगा तो भगवान प्रसन्न। आप लोगों ने हरिदास ठाकुर को सुना है 3 लाख हरिनाम करते थे अपति के रूप में, हमारे रूप सनातन जी कैसे भजन करते थे, महाप्रभु जी कैसे भजन करते थे दिखलाया, कैसे भजन करना है वैसे का। गृहस्थ में रहने वाले राय रामानंद जी, श्रीवास पंडित जी और भक्त लोग हो गए हैं, श्यामानंद प्रभु हो गए हैं, वो लोग भी वैसे ही भजन किया, कभी सूखी रोटी कभी चना कभी उभी मना, कभी 24 घंटे में से केवल कितना 24 मिनट सो लिया नहीं तो वो भी नहीं, एक एक पेड़ के नीचे एक एक दिन ऐसे रह करके भजन किया। हम लोग तो अभी आए हैं गोवर्धन में परिक्रमा करने के लिए, ब्रजमंड में निकले हैं, अपना सारा सामान लेकर के आए हैं, रजाई आई है तोषक आया है, और घर में जिसमें बाथरूम इत्यादि सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इतने में भी असुविधा हो
रही है,
अटैच बाथरूम नहीं है। महाराज जी मोजा ले जा सकते हैं कि नहीं, जूता ले जा सकते हैं कि नहीं, हम लोगों ने तो कभी चला भी नहीं, तो ऐसा करेंगे हम लोग जिससे कि कृष्ण द्रवित हो जाए। देखो हमारे लिए ऐसा कर रहा है, ब्रज की धोली अंगों में लगनी चाहिए ना, सिर पर लगना चाहिए, गोवर्धन में वैसा ही विश्वास करना चाहिए, गिरिराज गोवर्धन कृष्ण के प्रेम को देने वाला, तो ये दो अंगुल है, अपने भजन के लाख प्रयास करने पर भी कृष्ण नहीं मिलेंगे जब तक उनकी कृपा ना हो, और कृष्ण की कृपा सब समय बरस रही है, यदि साधन भजन नहीं करेंगे तो भी कोटि कोटि वर्षों में नहीं मिल सकेगा। जो सोदा जी ने कहा कि जरूर बांध करके ही रहूंगी, नारायण आप मेरी लज्जा नहीं रखेंगे, बहुत दिनों से आपकी सेवा, वो प्रार्थना कृष्ण के यहाँ पहुंच गई, क्योंकि नारायण तो कृष्ण ही है। कृष्ण ने देखा मैया पसीने से तरस हो रही है, श्वेत जैसे बूंदे मोती जैसे बूंदे टपक रही है और आंसू आंखों में भर आए हैं। गोपियों ने ताली बजा करके कहा जो सुधा तेरे बेटे को बंधन ललाटा ही नहीं, ब्रह्मा ने लिखा नहीं तो ये कैसे तू बांधेगी? कहा जो मैं ब्रह्मा जी से फिर नया बनवा लूंगी, मैं बांधूंगी जो ऐसे ही होना चाहिए। कृष्ण को दया आई, साथ ही साथ किया कृपया शीत स्व
बंधन कृष्ण
देखा और झट कृपा शक्ति उनकी आई हृदय में संचरित हुई। जोग माया की शक्ति अघटन घटन कटेसी समस्त भगवत्ता इत्यादि सब दूर हो गई और साथ ही साथ में कृपा शक्ति ने आकर उनको द्रवित कर दिया और वो शक्ति चली गई। बस द्वादश अंगुल में ही वो बंध गए, केवल सिर में बांधने वाली रेशम की डोरी से ही बंध गए और उसमें भी ओखल को लेकर के बांधा, ऐसा बांधा पेट की तरफ में गांठ नहीं दी, पेट के तरफ से रस्सी को लिया और फिर उसमें यहाँ पर घुमाव दे करके रख करके फिर ओखल के तरफ में बांधा, जैसे कृष्ण का छोटा सा हाथ
पहुंचे
पहुंचे नहीं और खोल नहीं सके, इस प्रकार से उनको बांधा। अभी था तू गोपियां रोने लगी, माताएं यशोदा जी का बहुत मना किया तो ये लड़का बिगड़ जाएगा, इसलिए जो यशोदा माँ जी उस परम ब्रह्म को लड़का मान करके और उनको बांध दिया और बिगड़ करके चली गई गति मंथन करने के लिए। बच्चे वहां पर कितने आ गए थे उन लोगों ने कहा वो हाथी हाथ में ताली बजा करके और कृष्ण को चिढ़ाने लगे जब वो चली गई। कैसा मजा लग रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है, कृष्ण के आंखों से अभी आज तक आंसू बह रहे थे वो सूख गए और वो भी मुस्कुराने लगे उनके साथ। अभी तक दाग पड़ा हुआ है गंगा यमुना जैसा, कादर से मिश्रित अश्रु इनकी दो धाराएं यहाँ से गंगा यमुना जैसी बह रही हैं, वो अभी धीरे 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 सूखने लग गई। कृष्ण भी मुस्कुरा दी, सखाओं ने कहा जी खोलो खोल दो खोल दो, मैया तो चली गई है। मधुमंगल दौड़ करके आया खोलने के लिए किंतु खोलता रह गया नहीं, खुला इतने में दूसरे इतने में तीसरे, एक सेकंड की देरी होने से सब लोग खोलने लगे किंतु खुला ही नहीं। लोगों ने कहा कृष्ण तुम भी खोल लो, हाथ बढ़ाया किंतु हाथ ही नहीं आया, मैया का बंधन सब तरफ से नहीं खुलेगा इसलिए नहीं खुला वो, इसलिए जब देखा ये खुलेगा ही नहीं बहुत चेष्टा करके सब लोग हार गए। तभी कृष्ण का कृष्ण को याद आई, ओहो हमारे भक्त जी नारद जी, नारद जी ने कहा है जमलाकिल कुबेर के पुत्र
नलकुबर
नलकुबर मणिग्रह, इसको पहले जन्म में जात वृक्ष और बाबर जो के अंत में कृष्ण तुम्हारा उठाए, ये कुछ परंपराओं को लेकर के हिमालय के एक प्रांत में मानस सरोवर में काम क्रीड़ा इत्यादि कर रहा था। नारद उधर से जा रहे थे, वो लटकियां तो निकल आई पानी से, कपड़े पहन लिए, उनको प्रणाम किया और ये उदंड जैसा और नारद जी को कुछ समझा नहीं तो ये बेकार का आदमी और उनको गाली देने लगे जल्दी आ जाओ ये कहाँ से मरा आ गया। नारद जी ने कहा तू वृक्ष हो गया है ठीक है तुम्हें अभी दंड देता हूँ, जिनको धन का बल रहता है अभिमान, जिनको उच्च कुल में जन्म लेने का, जिसको अपनी सुंदरता का गर्व है और जिसको पांडित का गर्व है, ये लोग भगवान को कभी भी नहीं भजन करते, ये लोग तृणागति सुनिश्चित नहीं होंगे, बड़े बड़े सौभाग्य मानो, जैसे महाराज अम्बरीश हो गए वो दूसरी बात है, जनक हो गए नंद बाबा हो गए, ये लोग की स्पेशल चीज है, किंतु अधिकांश रूप में इन चारों के रूप में जिनको ये चीज रहती है चारों, वो कभी भी नम्र नहीं होते, इसलिए भजन भी उनका नहीं होता, इसलिए तुमको दंड देता हूं, तुम्हारा सब धन से भ्रष्ट होकर के वैभव से उच्च जाति से भ्रष्ट होकर के तुम वृक्ष हो जाओ। बस रोने लगे थोड़े अच्छा अच्छा जाओ गोकुल में हो जाना और द्वापर के युग में तुमको ये उद्धार कर। कृष्ण को आई ये नारद जी ने कहा है उनको उद्धार करने के लिए नहीं, नारद के वचन को
पूरा करने के लिए।
उन्होंने कहा स्व अपने भक्त का की बात को रक्षा करने के लिए कृष्ण। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा जी चलो ये उखल को ठेलो। जब उन लोगों ने ठेलना आरम्भ किया, कृष्ण भी इस प्रकार से हो करके और चलने लग गए। खेचते 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 दरवाजे को पार कर लिया और पासी में दो पेड़ खड़े थे, जमज वृक्ष। बस कृष्ण तो इस उद्धर से उद्धर में पार हो गए। पार होने के बाद में उखल लग गई, न निकले। सखावन भी जत्न किया, नहीं निकले। तब कृष्ण ने क्या किया, थोड़ा सा उधर में जा करके और थोड़ा सा बल लगा दिया, खींच दिया। खींचा बल्कि नहीं, कृष्ण का संबंध है उस रस्सी से और रस्सी का संबंध है ओखल से, और ओखल से वो छू गए दोनों वृक्ष इधर और उधर, और झट वो कृष्ण के चरणों का स्पर्श उनको नहीं मिला, कृष्ण के अंगों का हाथों का स्पर्श नहीं मिला। कृष्ण का स्पर्श है उस रस्सी से, और उस रस्सी का स्पर्श है ओखल से लकड़ी की, और उस लकड़ी से ये दोनों छू गए। करंट निकली कृष्ण के शरीर से, और रस्सी के माध्यम से वो करंट कहाँ आई, ओखल में, और ओखल से दोनों छू। बस उसी से वो गिर करके एकदम बड़ी जोर से शब्द हुआ। जब इस जोर से शब्द हुआ, इतने में वहां पर जसोदा मैया, अरे कहाँ कृष्ण किधर गया। आकर के देखा जी वहां तो ओखल नहीं है, वो भी नहीं है, सखा भी नहीं है, किधर गए। नंद बाबा वहां से दौड़े गए, जमुना जा रहे थे सब हजारों लाखों ब्रजवासी लोग। देखा जी आंधी नहीं, तूफान नहीं, वर्षा नहीं आई, वृक्ष कैसे गिर गया। साथ ही साथ में वो लोग वहां पर पहुंचे, देखा जी दो पेड़ गिरे हुए हैं। कृष्ण कुछ
सहमे से
है, डरे हुए से। सखा लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये क्या हो गया। यदि वृक्ष सीधे गिरते तो कृष्ण के ऊपर में गिरते, सखा लोग भी ऐसे, वो तो ऐसे गिरे और ऐसे गिरे बगल से, जिससे कि बच्चों का कुछ नहीं हुआ। प्रचंड शब्द हुआ, सब लोग नंद बाबा आए। नंद बाबा को देखते ही कृष्ण की घीघी फिर बंद हुई और खूब जोर से बाबा का स्नेह। बाबा को कहा अरे ये क्या हो। जसोदा मैया आ करके देखी, अरे नंद बाबा तो यहाँ पर पहुंच गए हैं और कृष्ण को गोदी में ले रहे हैं, और कृष्ण खूब जोर से रो। जसोदा मैया सोची अब तो डांट पड़ेगी, हो सकता है कि दो चार उत्तम मध्यम भी लग जाए, इसलिए वो धरी सहनी से वो भी खड़ी। हम लोग वहां पर खड़े हो गए। आज देखो तो वृद्ध प्रौढ़ावस्था में एक पुत्र हुआ बड़ी मुश्किल से, और उसको भी बांध दिया, और वो आज यदि पेड़ के नीचे दब जाता तो न जाने क्या होती। इसलिए नंद बाबा जी कह रहे हैं बेटा सिर पर हाथ रखने लगे, इधर उधर करने लगे। देखा जी मामला क्या है, पूछे कृष्ण से, पूछा बेटा क्या हुआ, किसने मारा, किसने मारा। अरे तुम्हारे इसको बांधा कौन। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा जी मैया, मैया ने बांध दिया। अच्छा, बड़ा रोष हो गया हमको, ये कैसे निष्ठुर है, आज तो निष्ठुर का अपन देखा नहीं, आज तो बड़ी निष्ठुर को किसको बांध दिया। इसलिए नंद बाबा ने धीरे धीरे पीछे जा करके बड़ी मुश्किल से उसको, बड़ा मुश्किल, नंद बाबा की गांठ देने की अपेक्षा जसोदा जी की गांठ अधिक हो, उनका स्नेह अधिक है। ये सब गांठ फांठ नहीं, ये स्नेह का गांठ है, बंधन है। इसलिए धीरे 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 उसको सुलझा करके, और उसको कहा जब बेटा बांधा किसने, तो मैया ने, और खोला किसने, कृष्ण ने, बाबा ने एक लड्डू गुड़ का और चना का मिलाकर
गुड़ भानी
उनको दे दी। कृष्ण हाथ में लेकर के अभी अभी थोड़ा थोड़ी सुख रहे हैं, लंबी लंबी सांस है किंतु पहले से अब कम हो गई है, भंजा भी कम है। नंद बाबा ने कंधे पर उठाया दोनों को, सब लोग देखे जसोदा मैया बड़ी डर सभी लोग, और कृष्ण बलदेव को लेकर के यमुना में स्नान करने गए। जमुना में स्नान स्नान करने के बाद में अब करते करते चार बज गया सवेरे से, स्नान करके आते 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 पाँच छः बज गया। अब खाने का समय ब्रजवासियों का हो गया, आज घर में रसोई नहीं बनी, बनाए कौन? सभी बड़े आज दुखी थे। नंद बाबा अपने दरवाजे में आकर के बैठ गए। इतने में उपानंद जी नंद बाबा के बड़े भैया की स्त्री तो रोहिणी मैया और सब लोग, बहुत सी कथा है, मैं बहुत संक्षेप में बतला रहा हूँ, अभी हमको निकल रहा है, अभी हम लोग चलेंगे परिक्रमा के, इसलिए खूब संक्षेप में बतला रहा हूँ। इतने में वो सब आई महिलाएं, कहे कृष्ण चलो मैया तुम्हारी रो रही है, वहां नहीं जाएंगे। बहुत चेष्टा की, बलदेव को फेंक भेज दिया, बलदेव जी ने जही उनको पकड़ा कृष्ण को ले जाने के लिए, ते ही ऐसा झटका दिया जा बलदेव जी बहुत दूर गिर पड़े। अंत में उपानंद की पत्नी आई और रोहिणी जी निकट और बोली जैसे मैया क्या नहीं जलेगा, खाएगा क्या, रहेगा कहाँ, तो बाबा के यहाँ रहेगा, खेलेगा किसके साथ में, दाऊ भैया के साथ में, खाएगा क्या, मिश्री और भारूषण गैया का दूध दुआ ना, बाबा दूध देंगे मुख में ही खारा जान जाएगा और मिश्री को लेकर के चूस लूंगा, बस पेट भर जाएगा तो हमारा पेट भर जाएगा, जाएगा नहीं या तो नहीं जाएगा। और मैया यदि सीताराम, जय सीताराम,
जय सीताराम,
तो
माने क्या
मर जाए, यदि
मर जाए तो बस कृष्ण का अपराध, बांध टूट गया, बहुत विशाल बांध था, कृष्ण का बांध था ना, किंतु कृष्ण का भी धैर्य छूट गया और मैया मैया कह करके हाथ फैला दिया और रोहिणी मैया जी के गोद में चले गए। रोहिणी जी ने गोद में ले लिया, जसोदा जी जहां पर रो रही थी बस उस घर में गई और गोदी में लेकर के बैठा दिया। उनका तो आंसू सूख गया था, हृदय भी सूख गया था डर के मारे। अब कृष्ण को गोदी में पा करके वो भी फौहारा की भांति वो भी खुल गया और बड़ी जोर से डकर डकर करके बेटा बेटा कर करके रोने लगे, अपना स्तन दे दिया, स्तन से दूध झरने लग गया। गोपियां सब रोने लगी, नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा भी रोने लग गए, जो लोग वहां पर थे सभी लोग रोने लग गए। बंधन भी उनका पहले से खुल ही गया था। अब रोने के बाद में फिर रोहिणी मैया ने झट खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके रोटी बनाई और सब नंद बाबा को बुलाया, नंद बाबा आए, उपानंद जी आए, सब परिवार आया और उनको थोड़ा थोड़ा परोसा। कृष्ण और बलदेव को नंद बाबा ने अपने दाहिने बाएं जंघे पर बैठा करके पहले उनको खिलाया और फिर अपना थोड़ा सा अवशिष्ट खाया। खाने के बाद में सब ये लोग खा लिए और फिर यशोदा जी के यहाँ लिया गया, तब उन्होंने कृष्ण को गोदी में रखे, अपना थोड़ा सा खाया, इसके बाद में अब आप लोग विश्राम कर चुके हैं, अभी हम लोग चलेंगे परिक्रमा के लिए। बोलो गोवर्धन गिरिराज रामोत्तर बंधन लीला, यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय, बलदेव भैया की जय, रोहिणी मैया की जय, श्री विश्वभानु बाबा की जय, कृष्णिका मैया की जय, अनंत मंजरी की जय, श्रीदाम भैया की जय,
उधर से इधर पास भी आई। पहले पर्वत बहुत ऊंचा था, सुनते हैं कि चार योजन ऊंचा था, धीरे धीरे चार योजन माने चार 32 मील ऊंचा, चार
योजन में चार
और उधर से ढला, उधर से ढला, बस यही जाने का राधा कुंड, श्याम कुंड से पुछरी के अंदर में यही एक रास्ता था जिसमें साधु पास होकर के आ सकता था। और राजा के तरफ से खाती बैठती थी टैक्स वसूल करने के लिए। उस समय कंस राजा था। ऐसे जगहों में जैसे कि हम लोग जहाँ जहाँ आ रहे हैं, पहले तो खूब टैक्स था, किंतु आजकल टैक्स कम होने पर भी लोगों के उत्पीड़न से उन लोगों से गुंडागर्दी करके और वो टैक्स ले देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो हटा दिया है। तो ये टोल टैक्स के रूप में यहाँ पर दान खाती थी। यहाँ पर कृष्ण अपने गायों को चराने के लिए सखाओं के साथ में आते थे। किसी समय में जहाँ हम गोविंद कुंड जाएंगे वहीं पर यज्ञ हो रहा था, ठाकुर मुनि जी यज्ञ करा रहे और गोपियां कृष्ण के दर्शन की लालसा से वो भी यज्ञ में भी कहीं भी वो आती थी। तो उधर से दधि इत्यादि दुग्ध खीर इत्यादि लेकर के जा रही हैं गोविंद कुंड में, और कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ में उनका मार्ग यहाँ पर अवरुद्ध कर दिया। दान दे करके जाओ, ऐसे नहीं जाने दे। गोपियों ने कहा कि दान कैसा, किस चीज का दान? आ तो पथ में चलने का दान। कहिए ये पथ किसका है? पथ तुमने बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया या किसने बनाया? तुमको दें तो मैं वृंदावनेश्वर हूं, वृंदावन का मैं मालिक हूं, इसलिए हमको दान दे करके जाना पड़ेगा। तुम लोग रोज रोज इधर से आती है, फूल तुम लोग ले लेती है, पौधे बिगड़ जाते हैं और सब चीजें बगीचा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसका फिर से ठीक करने के लिए ये टैक्स की व्यवस्था है, इसलिए दे करके जाओ। कहिए तुम कब से इसका मालिक हुआ? पपौती है, तुम्हारे दादा पर दादा के वजह वहीं से तुम लोग वसूल कर रहे हो, उन्होंने नया वसूल कर रहे। कहिए बात बतंगड़ मत करो, टैक्स दे दो, बस हम ही इसके मालिक हैं। तो बतलाओ कैसे मालिक है? उन्होंने कहा वृंदा से मेरी शादी हुई है, वन वृंदा जी का है, इसलिए मैं यहाँ का मालिक हुआ, इसलिए यहाँ पर दान दे करके जाना। अच्छा ये बतलाओ जो तुमने यहाँ का एक पौधा भी नया लगाया है, पानी दिया है, सींचा है? चुप रहे थे। बोली हमारे लाखों लाख है गैया आकर के इस वन को नष्ट करती हैं, तुम इसका भक्षक और तुम इसका रक्षक बन, तुम तो नष्ट करते हो और पानी कभी दिया नहीं, बिंदा जी सेवा करती हैं, तो बिंदा जी मेरी पत्नी है इसलिए मैं मालिक हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बिंदा जी को बुलाया जाए। तुम झूठ बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर में हम लोगों का एतबार नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए बिंदा जी को बुलाया जाए। बिंदा जी को बुला करके लाया गया। बिंदा जी से पूछा, जी ये तुम्हारे पति हैं, इनसे तुम्हारी शादी हुई थी? तो मैं तो इसको काले को मैं जानता ही नहीं हूँ, इस काले से हमारा विवाह का क्या संबंध है? इसलिए हम लोग हमारा कभी विवाह नहीं हुआ। तो गोपियां हंसने लगी, कहे इतना बड़ा होगा अभी तक कुंवारा है, शादी तो हुई नहीं, ब्रज का कोई भी व्यक्ति अपनी की इसको देने के लिए तैयार नहीं, और ये जानबूझ करके सभी का पति होना चाहता है, विवाह की बड़ी लालसा इनको है, किंतु कोई तो विवाह तो करता नहीं। खैर जैसा भी हो, कृष्ण ने कहा कि मैं बिना टैक्स लिए जाने नहीं दूंगा, जो कुछ हो जाएगा हो जाएगा। यहीं से पास में एक दान निवर्तन कुंड है, उस समय इधर तो रास्ता है ना, गोपियां कृष्ण को वहां ले गई और वहां पर बैठा करके उनको दधि मक्खन इत्यादि दिया। मक्खन क्या चीज है, दही क्या चीज है? प्रेम में ज्यादा टेस्ट है, आस्वादन है, न दही और मक्खन में है, दही और मक्खन नहीं है। उस स्थूल लोगों के लिए दही और दुग्ध में कुछ टेस्ट है, प्रेम में टेस्ट है, इसलिए गोपियों ने प्रेम का वो दान दिया ही। कृष्ण ने उस प्रेम को दान दिया और लिया भी। वो दान निवर्तन कुंड है, वहां पर आगे आएगा। कृष्ण ने यहाँ पर उनको दान लेने की और गोपियों ने वहां उसको दान को लौटा करके कृष्ण से दान लिया। ये सब प्रेम का विषय है। जितना ब्रजमंडल है वो प्रेम के ऊपर में आधारित। इस प्रेम को जगत के आदमी नहीं समझते। कोटि कोटि वर्षों के साधन के बाद में थोड़ा सा हम कुछ उपलब्धि कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हम लोग यहाँ पर आते हैं इसलिए वृंदावन में दो स्थल हैं, एक गिरिराज है, दूसरी जमुना जी। ये कृष्ण के प्रेम को देने वाले हैं, बड़े उदार गिरिराज जी हैं। इसलिए आज हम गिरिराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ में आप लोग जो लोग आए हैं सब लोगों का हृदय पवित्र करके कृष्ण प्रेम का स्निग्ध सुशीतल सुगंधित धारा को प्रवाहित कर कृष्ण प्रेम हम लोगों के हृदय में दे। यही प्रार्थना करके उनके प्रेम को हम लोग समझ सके, साधन भजन कर सके और कोई भी संसार की आसक्ति न रह जाए, इस को ठीक गिरिराज ही कर सकते हैं। तो हम लोग भावना लेकर के यहाँ से चलेंगे, कृष्ण से यही मांगेंगे, आप यदि प्रसन्न है तो यही कीजिए। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मांग कृपा निधे स्वप्रिया चरण। अपने पियाजी की किंकरी हमें बना दे। कृष्ण की जो प्रिया राधिका जी हैं उनकी जन्म जन्मांतर की हम दासी बन सके, हे गिरिराज महाराज बस यही हमारे अंदर में कामना हो और कोई काम ना। बोलो गिरिराज धारण बोलेगा
cross and have come here is called Dan Ghati. In fact, this is Govardhan Hill. It was said that at the time of Krishna, it was about 32 miles high. 32 miles high. And the place, the road from which we have come, that was the only passage to cross this hill. That is why this place was called Dan Ghati, because at that time King was Kans, he put his officers here to collect tax, toll tax from the people going through this passage here and there. So it was called Dan Ghati. Once upon a time, there was a sacrifice going on nearby Govind Kund. Some rishi, his name was
Bhaguri
Rishi. He was performing a sacrifice, and gopis, they came to this sacrifice with milk, curd, and kheer and all such things. In fact, that was only pretext. They did not come, in fact, for sacrifice. They came out from their house to meet Krishna. This was their intense desire and internal desire. So when they came to this ghati, Dan Ghati, Krishna with his friend Sakhas, he was standing here. He said, "Give me tax." Gopi says, "What tax? Why tax? Who are you to collect tax?" He said, "I will collect tax because this is Dan Ghati. You always pass by this place. You are plucking the flowers. You are taking the leaves of the plants. We have to maintain it. So you have to give tax." Gopi said, "How you are concerned with all these trees and plants? You come here with your cows and raise the whole grass and you are destroying the whole field. You are bhakshak. Bhakshak means destroyer. And you are calling that you are maintainer of this place, that is you are rakshak. You are not rakshak. How you are rakshak?" He said, "Look." Gopi said, "Vrinda is looking after this place. And you cannot collect tax." Krishna said, "Look, I have married Vrinda. So Vrinda is owner of this place and I am her husband, so I am Vrindaneshwar. I am owner of this place. Oh, call Vrinda if she says, because we cannot rely on you. You always give wrong statements. Vrinda, is this boy your husband? Is this person your husband? Who is he? I have never seen him. This black person? How can he be my husband? Oh, I have heard this black person, he has become so aged, no one is ready to give his daughter to him. So what he does, he goes everywhere and claim every girl his wife. So this place, this Leela kept on going. There is a place nearby Maharaj told, Dan Nivartan. There Krishna took all gopis there and gopis gave him butter.